जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री वृंदावन धाम की श्री बरसाना धाम की हिताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे तो आज कौन सी तिथि है? आज चतुर्थी है, श्री गणेश चतुर्थी है। आज श्री गणेश जी का आज पूजन होता है और हमारे महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी बहुत जोरदार मनाई जाती है। यहाँ पर भी होती है लेकिन महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा ही उसका प्रभाव होता है। हमारे गांव में भी चतुर्थी बहुत जोरदार मनाते हैं। ऐसे मैंने सुना है कि सभी देवताओं को एक बार कहा गया कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके सबसे पहले लौट के आएगा उसकी जनता के द्वारा पूजा की जाएगी। मतलब पूजन तो सबका होगा लेकिन जो जिस देवता की सबसे पहले पूजा की जाएगी वो पूजा किसको मिलेगी इस पर आधारित होगी। हमारे यहाँ पे कैसा होता है, जो भी आप शुभ कार्य करते हैं पहले गणेश जी को पूछते हैं। गणेश जी से पूजन होने के बाद में फिर आपको जो भी है आपको यज्ञ करना है, जो भी विवाह करना है, गृह प्रवेश करना है, जो भी उसके बाद में होता है, प्रथम पूजा का मान उसको मिलेगा जो सबसे पहले पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आएगा। तो सब लोग गए रेस पे लेकिन गणेश जी ने पृथ्वी पर राम का नाम लिखा और उसका 3 बार प्रदक्षिणा किया और आ गए। इसलिए उनको सबसे पहले पूजा का मान प्राप्त है क्योंकि न केवल वो मतलब बुद्धिमान है, बहुत बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान, बड़े भक्त है भगवान की। वो जानते हैं कि भगवान का नाम ही सर्वस्व है उनके नाम में सब कुछ, पृथ्वी भी है, ब्रह्मांड भी है, सब निर्माण भी है, सब वो स्वयं भी उनके नाम में है, उनकी सारी शक्तियाँ उनके नाम के अंदर है। उनके नाम के अंदर क्या नहीं है, नाम के बाहर क्या है बताओ? उनके नाम के बाहर कुछ नहीं है। तो इसलिए मानना पड़ा कि उन्होंने पृथ्वी का क्या, सब चीज का प्रश्न कर लिया, सबसे पहले आ गए वो। इसलिए आज भी श्री गणेश जी का पूजन सबसे पहले होता है, ओम श्री गणेशाय नमः। और मंदिर हो या कोई पवित्र स्थान हो, उसके दरवाजे पर उनका चित्रपट या उनका विग्रह रखते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति श्री गणेश जी का दर्शन करता है उसके सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, जो भी अशुभ है वो नष्ट हो जाता है केवल दर्शन करने मात्र से। इसलिए गणेश जी जो है वो भगवान के बड़े विशेष देवता हैं, बड़े विशेष भक्त हैं वो। जैसे बहुत सारे देवता हैं लेकिन कुछ प्रधान देवता है उसमें, तो शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, लेकिन सब लोगों को उतना सम्मान नहीं जितना इनको है। बुद्धि देवता भी हैं और विघ्नहर्ता भी हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा कि ये नृत्य कला में बहुत निपुण हैं, बहुत बड़े शरीर हैं उनका, लंबोदर, लेकिन नृत्य में बहुत एक्सपर्ट हैं। कई बार उन्होंने कृष्ण भगवान को नृत्य करके रिझाया है। और हमारे वृंदावन में कौन है बताइए, ब्रजवासी लोग बताइए, वृंदावन में कौन से गणेश जी हैं? मोटे गणेश जी। हाँ, अरे बोलो आप लोग, क्या वृंदावन में क्या करते, क्या हो रहा है यहाँ पर? मोटे गणेश जी कहाँ पर है वो? वनखंडी महादेव पे। परफेक्ट, सब जानकारी रखना जरूरी है। और शिव जी कहाँ पर है? गोपेश्वर महादेव। और कहाँ है शिव जी? नंदगांव में है, काम वन में है, गोवर्धन में है, मथुरा में है, सब जगह पे है वो, छाए हुए हैं सब जगह पर। इनके पुत्र है गणेश जी। तो इनको बुद्धि देवता भी माना गया है, क्योंकि बुद्धि इनके पास से प्राप्त हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है समझने वाली कि ये सारे देवता जो हैं, जैसे ब्रह्मा जी या शिव जी या गणेश जी या देवी, हाँ, ये सबसे आप सब लोग श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त कर सकते हो। विशेष बात है ये। उनके साथ साथ उनको और भी कई चीज़ें आपको देने का शक्ति और अधिकार भी दिया है। जैसे गणेश जी बुद्धि दे सकते हैं आपको, विद्या दे सकते हैं, विघ्नहर्ता कहा गया उनको, हमारे रास्ते के विघ्न हटा सकते हैं। लक्ष्मी देवी धन दे सकती हैं, सरस्वती जी विद्या दे सकती हैं, शंकर जी बहुत कुछ दे सकते हैं। लेकिन लोग उनसे मांगते नहीं हैं, लोग उनसे वही मांगते जो उनको चाहिए। पैसा चाहिए उनको, अच्छा पति चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, घर चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन कोई व्यक्ति उनसे भगवान की भक्ति नहीं मांगता है। राधा रानी के जो माता पिता हैं उनका नाम है कीर्तिदा और वृषभानु महाराज। पिछले जन्म में वो सुचंद्र और कलावती थे, और तीन महासतियों को जो शाप प्राप्त हुआ था, बड़ी लंबी कहानी है, लेकिन उसमें तीन महासतियों में से एक महासती, तीनों को शाप मिला कि वो पृथ्वी पर आना होगा, और एक महासती जो है वो कौशल्या की माँ बनी, नहीं सॉरी, सीता की माँ बनी, एक पार्वती की माँ बनी और एक राधा रानी की माँ बनी। तो वो कलावती जो है, वो कलावती और सुचंद्र, उनका विवाह हुआ। वो तीन महासतियों में से एक कलावती बनी, और सुचंद्र ने और कलावती ने मिलकर 12,000 साल स्वर्गीय तपस्या किया। और अगर 12,000 साल के बाद में आपको अगर ब्रह्मा जी का दर्शन प्राप्त होता है तो आप लोग क्या मांगोगे उनसे? बोलो, कुछ नहीं मांगोगे? थैंक यू सर, कुछ नहीं चाहिए हमको। आप सोच लो कि आपने 12,000 ऐसा तपस्या किया है कि पेड़ से पड़े हुए पत्ते आपने खाए, कभी केवल हवा ही खाया, इतना सख्त व्रत किया आपने, सब इंद्रियों का दमन किया, कोई भोग नहीं कुछ नहीं, और फिर ब्रह्मा जी प्रकट हो गया आपके सामने, तो आप क्या मांगेंगे उनसे? यस, मोक्ष मांगेंगे। लेकिन माय डियर सर, सुचंद्र कलावनी ने मोक्ष नहीं मांगा। यही उनकी महानता है। वसुदेव और देवकी पिछले दो जन्मों के अंदर, एक पहले जन्म के अंदर प्रश्नी और सुतपा थे, प्रजापति थे, प्रजापति, तब उन्होंने 12,000 साल तप किया था ऐसे ही। और एक कपल हैं, द्रोण और धारा, जो यशोदा और नंद महाराज बने, उन्होंने भी 12,000 साल तप किया था, वैसे ही भयंकर तप किया था। लेकिन विशेष समझ वाली बात यह है कि तीनों ने, एक को तो भगवान ने दर्शन दिया प्रश्नी और सुतपा को, तो उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, उन्होंने कहा आप पुत्र बन के आ जाओ हमारे, नहीं आप जैसा पुत्र होना चाहिए ऐसा बोला। तो भगवान ने बोला कि मेरे जैसा और कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, तो मैं ही आता हूँ। तो वो जन्म में वो प्रश्नी गर्भ बने भगवान, अगले जन्म में भगवान वामन देव बने, जब वो अदिति और कश्यप बनकर आए थे, वही दो, और वही दो वसुदेव और देवकी बनकर आए, जब वो कृष्ण बनकर जन्म लिया उन्होंने तीसरी बार। और द्रोण और धारा को भी वही उन्होंने मांगा कि आप मेरे, हमारे पुत्र बनकर लीला करो हमारे साथ। एक ने पुत्र बनने का खाली मांगा तो पुत्र बनकर तुरंत चले गए, दूसरे ने पुत्र बनकर लीला करने का, वात्सल्य का भाव मांगा। सुचंद्र कलावती ने भी बोला कि आपकी अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, आपकी मतलब भगवान की, वो हमारी पुत्री बनकर आ जाए। ये सबका अर्थ क्या होता है कि हम लोग अक्सर जब भी कुछ तप करते हैं, जब कुछ करते हैं, तो कुछ मन में रहता है हमारे। हाँ, हमारे महाराष्ट्र में वो सत्यनारायण की पूजा करते लोग, वो हेतु से किया हुआ था कि मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बेटे का एडमिशन हो जाए, मेरे बेटे को अच्छी नौकरी विदेश में मिल जाए, ऐसा कुछ मन में संकल्प होता है, उसके लिए वो सत्यनारायण की पूजा करते हैं कि वो इच्छा पूरी हो जाए। फिर वो पूरी होने पर और एक पूजा करते हैं। तो हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ मन में रखता है खुद के लिए। हाँ, खुद के लिए लगता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है। मोक्ष भी एक खुद के लिए मांगे ना, वो आप मोक्ष मांगेंगे तो आपका मोक्ष होगा, दुनिया का क्या होगा, बाकी किसका क्या होगा, वो तो खुद के लिए मांगा हुआ कुछ वरदान है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी भी खुद के लिए वरदान नहीं मांगते, ये सबसे बड़ी समझने वाली बात है। निस्वार्थ भावना होती है उनकी, खुद के लिए कभी कुछ नहीं मांगते वो। नारद मुनि ने भी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, मतलब भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा देवी को से बेहोश महाभाव आनंद की अवस्था में देखा, तो उनको भी बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उनको देखकर ही जितना भजन में उनको आनंद होता है, उससे कई गुना अधिक अद्भुत आनंद उनको प्राप्त हुआ। उस आनंद की स्थिति में भी जो उनको स्वतः बिना मांगे प्राप्त हो रही है, उसमें भी उन्होंने जब वर मांगा तो बोला भगवान आप ये रूप में ना पृथ्वी पर जन्म लेना, ये रूप आपका इतना लुभावना है कि इसको देख के ही मन में प्रेम और भक्ति ऐसे अपने आप प्रकट हो जाती है, तो मेरी इच्छा है कि आप ये दुनिया में आ जाओ, तो आपको देख के दुनिया के सारे लोगों के मन में ऐसा प्रेम और भाव प्रकट हो जाए। अपने लिए कुछ मांगा क्या? दूसरों के लिए मांगा, दूसरे के कल्याण के लिए मांगा। और दूसरी बात समझने जैसी इसमें कि जब वो पुत्र के रूप में आओ, पुत्री के रूप में आओ, या जन्म ले लो, दुनिया के लिए अवतार ले लो, उसमें उनका खुद का कुछ स्वार्थ नहीं है। और उसमें एक बात समझना जरूरी है कि मोक्ष से भी अधिक बढ़कर चीज है वो। मोक्ष तो एक जैसे कि जीरो लेवल पे आना है, मतलब कर्म के बंधन से छूटकर मुक्त हो गया अभी आदमी को। लेकिन मुक्त होने के बाद क्या करना है? मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम, हाँ उसके आगे भी कुछ है। हाँ, नेगेटिव से जीरो, जीरो पे आ गए तो पॉजिटिव होता कि नहीं कुछ? तो मोक्ष ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भक्त के पीछे है, ये सब मोक्ष वोक्ष भागते रहते हैं हाथ जोड़कर। भुक्ति, मुक्ति और सिद्धि, भुक्ति मतलब भोग, मुक्ति मतलब मोक्ष, और सिद्धि मतलब चमत्कार शक्ति ऐसी पावरफुल। वो तीनों जो देवियां हैं वो एक भक्त के पीछे हाथ जोड़कर भागते रहते हैं, और भक्त उनसे पीछे मुड़कर भी देखता नहीं, दुनिया उनके पीछे भागती रहती है और भक्त के पीछे वो भागते रहते हैं। जब दुनिया उनके पीछे भागती है तो वो दूर भागते रहते हैं। मोक्ष, मुक्ति, भुक्ति और सिद्धि तीनों दूर भागते हैं। जैसे आप अगर आपकी छाया के पीछे भागोगे तो छाया आपसे दूर भागेगी, लेकिन आप छाया से उल्टा जाओगे छाया आपके पीछे भी जाएगी, है ना? आपने देखा है, कभी अनुभव किया है इसका? शैडो को छोड़कर उल्टा चलोगे तो शैडो आपके पीछे पीछे आएगी, और शैडो को पकड़ने जाओगे तो दूर दूर भागेगी आपसे। इसलिए भगवान की दिशा में चलो, ये सारी मुक्ति सिद्धि आपके पीछे आएगी, ये इसका प्रमाण है। तो हमारी कथा हमने गणेश जी से आरंभ की थी, तो गणेश जी भी अगर आप उनको भगवान की भक्ति मांगेंगे तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन कोई मांगता नहीं उनसे। हर व्यक्ति यही मांगता है, हाँ, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे, बस सब कुछ हमें मिले, क्या जाता तेरा, मेरा लगता तेरा लगता मेरा, मेरा लगता तेरा, क्या जाता तेरा, ऐसे एक उसका एक और भी बताते लोग। हाँ हाँ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उसको उल्टा क्या बोलते हैं, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा मतलब मुझे दो जो भी है, मुझे दो, आप क्यों परेशान, मुझे दो, मुझे चाहिए ये। तो इसलिए भगवान के भक्त महान होते हैं, वो कभी खुद के लिए मांगते नहीं है। तो ये राधा रानी जो है वो ऐसे तप के द्वारा वरदान के रूप में प्रकट हुई है। और विश्वभानु महाराज जब राधा अष्टमी के दिन सवेरे उठे और स्नान करने गए गोकुल में, रावल में, जो गोकुल जमुना बहती है ना, वो जमुना किनारे उनका महल था, वहाँ पर जब अपने ही वृषभानु कुंड में उतरे तो उनको बहुत बड़ा सुंदर दिव्य प्रकाश नजर आया, सुनहरे रंग का, से हजारों सूर्य एक साथ सुबह का प्रकाश दें एक साथ, तो कितना तेज होगा उसके अंदर स्वर्ण कांति। तो बहुत थोड़ा पास में गए, देखा कि ये एक्चुअली एक कमल से आ रहा है प्रकाश। फिर और पास में गए तो कमल में भी नहीं आ रहा है, कमल के अंदर कोई है उससे आ रहा है वो। फिर और बात देखे तो कमल के अंदर एक सुंदर बालिका है छोटी सी, अनंत सूर्यों के कांति की तरह तेजस्वी, इसका तेज सब जो फैल रहा है वो पड़ी हुई है उसके अंदर। तो दोबारा ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ही सुचंद्र हो और आपकी पत्नी कलावती है, और आपने 12,000 साल तप किया है, तब आपने भगवान की अंतरंगा शक्ति की मांग की थी, यही है वो जो आपके लिए आज प्राप्त हो रही है, इसे अपनी कन्या के रूप में घर ले जाओ, उसका लालन पालन संगोपन करो। तो वो घर ले गए। ये राधा रानी के जन्म की कहानी है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। उसके पीछे ऐसी कहानी है कि हिमालय को उसके पत्नी द्वारा, जो एक महासती थी, है ना, मैंने बताया ना आपको, एक महासती हिमालय की पत्नी बनी जिससे पार्वती का जन्म हुआ, और जब पार्वती का जन्म हुआ तो उसके महादेव का साथ विवाह हुआ ना, उस कल्याण का। तो पार्वती तो अन्नपूर्णा है, इतनी शक्तिशाली देवी है वो, और महादेव जो देवों के भी महादेव, ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बावजूद भी ब्रह्मा जी के भी श्रेष्ठ है वो, इसलिए महादेव स्वयं ब्रह्मा जी उनको पुकारते हैं महादेव। महादेव का विवाह हुआ तो विंध्य विंध्य थो विंध्य थे ना, विंध्य पर्वत, उनको लगा कि अरे मुझे भी ऐसी कन्या होनी चाहिए, तो उन्होंने तप किया और ऐसा वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मुझे ऐसी कन्या होनी चाहिए जिसका पति महादेव को परास्त कर सकता है। बड़ा सोच समझ के मांगते हैं, बहुत मतलब इसकी हिमालय की बेटी का जो पति है वो महादेव है, तो मेरी बेटी ऐसी होनी चाहिए जिसका पति महादेव को परास्त करने वाला होना चाहिए। मैं महादेव को परास्त केवल कृष्ण कर सकते हैं, ये एक बात है। और कंस, कंस जब विंध्य पर्वत को तप करके जब ये प्राप्त हुआ तो दो कन्या प्राप्त हुई, एक राधा रानी और एक चंद्रावली, दो कन्या प्राप्त हो गई। वो दो कन्या प्राप्त करके बहुत खुश हो गया वो, तो ये पता चला उनको कि अभी ये कन्या का जो पति होगा वो महादेव को परास्त करने वाला होगा। तो ये बात कंस के कान पे आई, और कंस को, महादेव को भी परास्त करने वाला पावरफुल बनना था। अभी आप सोचिए जरा, ये कंस ने महादेव की तपस्या की है, ऐसा नहीं कि जानता नहीं महादेव महादेव है, लेकिन मौका मिलेगा तो महादेव का भी ऊपर बन जाऊंगा मैं, मौका मिला तो भगवान ही खुद बन जाऊंगा। अभी चांस नहीं, इसलिए ठीक है चल रहा है काम, लेकिन चांस मिलेगा तो उनके भी सर पे बैठ जाऊंगा। इसको राक्षस कहते हैं, है ना। राक्षस का कोई पूजनीय हमेशा नहीं रहता है। राक्षस देखता है कि भी आज की तारीख में ये पलड़ा भारी है, इसकी पूजा की जाए, कल को उसको लात मार सकता है वो, मौका मिलेगा तो किसी को भी लात मारेगा वो, क्योंकि वो खुद के सिवा किस पर प्रेम नहीं करता है। बस खुद का स्वार्थ कहाँ पूरा हो वहाँ मत्था टेकेंगे। जैसे कि वो कंस दिग्विजय कर रहा था, सबको रौंद रहा था, लेकिन जब वो महेंद्र पर्वत पर गया तो उसने तुरंत दंडवत किया परशुराम जी महाराज को और प्रदक्षिणा किया कई बार उनका, क्योंकि उस समय वो जानते थे परशुराम जी बहुत पावरफुल हैं, इनसे पंगा लेना नहीं चाहिए, इनके दंडवत करना ही अच्छा है। तो परशुराम जी से धनुष प्राप्त किया विष्णु का, लेकिन मौका मिलेगा तो उस पर भी सर पाव रखेंगे, क्योंकि तो उन पर भक्ति भक्ति नहीं है, क्या मिलता है वो देखते हैं, खाली बस काम की बात करो। इसको राक्षस कहते हैं। तो जिसकी महादेव की पूजा किया उसने पहले, है ना, कैलाश पर्वत को 100 बार उठाया उसने और महादेव का पूजा किया, वरदान प्राप्त किए, वही महादेव को परास्त करने वाला खुद को बनना है उसको, इसलिए वो पुतना को आदेश देता है जाओ और वो कन्या को उठा के लेगा, मुझे उसे विवाह करना है, ताकि जो भी उसका पति होगा वो अपने आप ही महादेव को परास्त करने वाला हो जाएगा। तो पुतना गई, तो पुतना कैसी थी, वो तिनका होता है ना तिनका, वो तिनको के हाथ में लेगी, उसको विमान बनाएगी मंत्र बोलकर, वो तिनके का द्वारा मंत्र बोलकर बना हुआ विमान जो है उस पर बैठकर वो यात्रा करेगी आकाश में और जहाँ चाहे वहाँ जाएगी। तो बैठ गई तिनके पर और पहुँच गई उधर विंध्य पर्वत के पास, वहाँ पर वो बेटियाँ खेल रही, दोनों बेटे को उठाया उसने, क्योंकि तो उसको एक्चुअली पता नहीं कि वरदान किसको है, होलसेल में लेके गई वो, पूछते नहीं बेटे कि इसका क्या है उसका क्या है, वो कौन है महादेव वाली कौन है, ऐसा नहीं पूछा उसने, उठाया और भाग गई वो। तो जब विंध्य को पता चला, अरे बाप रे दोनों कन्याओं को उठा के ले गया, तो उसने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, बोले बैठो यहाँ पर, तुरंत मंत्र उच्चारण करो, उसको अग्नि निर्माण करो, जला दो उसको अग्नि आकाश में। ऐसे लोग हुआ करते थे, यहाँ बैठकर मंत्र बोलेंगे तो उधर कोई जल जाएगा, अग्नि का प्रकोप शरीर में हो जाएगा, अग्नि तत्व को प्रकोपित करके कहीं भी वो जल जाएगा वो। तो बैठ गए सब लोग ब्राह्मण लोग, मंत्र जपने लगे, तो ये आकाश से उड़ रही है, कहाँ से, विंध्य पर्वत महाराष्ट्र में, विंध्य पर्वत से वो जा रही है कंस की नगरी की ओर, मथुरा की ओर। तो अग्नि बढ़ने लगी शरीर में उसके, हाँ तब तक ये कन्याएं थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, 1-1 साल की हो गई थी आसपास। तो एक हाथ जब दोनों जलने लगा हाथ, तो एक हाथ से एक लड़के को छोड़ दिया उसने, मतलब इतना वो तपने लगी। तो वो लड़की जो है वो विदर्भ में गिरी भीष्मक राजा के पास, जो आगे जाकर रुक्मिणी के पिता बने हैं, जिसको रुक्मिणी बनी है कन्या उनकी, तब रुक्मिणी नहीं थी, तब ये लड़की वहां पर गिरी। तो भीष्मक ने उसका लालन पालन किया 5 साल तक, फिर पूर्णमासी वृंदावन से गई है वहां पर, और उसने भीष्मक से चंद्रावली देवी को प्राप्त किया है और वो चंद्रभानु को आके सुपुर्द किया है उसने कि आपकी बेटी है ये। ये कथा सुनी थी आपने पहले कभी। फिर दूसरी लड़की एक हाथ में अभी भी है और मंत्र अभी भी बोले जा रहे हैं, हीट अभी बढ़ रही है। तो उतने में और कुछ आगे जाते हैं वो नागपुर, तो महाराष्ट्र में तो आते हैं मथुरा की ओर, तो दूसरी लड़की को छोड़ देता है वो, देती है वो पुतना जलने की वजह से वो असह्य हो जाती है। तो वो जाके गिरती है वृषभानु महाराज के जमुना किनारे वाले कुंड में, तुरंत जैसे गिरने वाले तो वहाँ कमल उत्पन्न होता है, सुनहरा कमल, उसमें वो गद्दी पर ऐसे नरम नरम गिर जाती है। और उसके दिन उसी दिन वो वृषभानु महाराज जाते हैं उधर स्नान करने के लिए रोज की तरह। तो रोज तो उनको कमल दिखाई नहीं पड़ा कभी, उस दिन कमल ही दिखाई पड़ा, रात के मतलब भोर के अंधेरे में इतना प्रकाश दिखाई पड़ा। तो ये कहानी के कारण राधा रानी उनसे बड़ी भी है और छोटी भी है। बड़ी है क्योंकि वो ऑलरेडी 1.5 साल की थी, टू बी प्रिसाइज विथ यू 350 दिन की थी 345 दिन की थी बाय द वे, नहीं 350, हाँ 345 दिन की थी, क्योंकि उसके केवल 15 दिन पहले गोकुल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जो गोकुल से आए थे, वो भी जमुना किनारे ही है ना गोकुल। और उसके ठीक 15 दिन के बाद में राधा रानी वहाँ से गिरी है, लेकिन एक साल पहले ही वो बिंदिया के यहाँ जन्म हुआ था उसका। तो वृंदावन के कैलकुलेशन की दृष्टि से जब प्राप्ति हुई तब वो 15 दिन से छोटी थी उनसे, और एब्सोल्यूट टाइम से देखेंगे तो वो उनसे बड़ी है। तो ये राधा रानी है। हाँ, आप जहाँ बैठे हो ना, आप लोग जहाँ पर रहते हो, जहाँ सांस लेते हो, जहाँ का पानी पीते हो, वो सबकी सम्राज्ञी जो है वो राधा रानी है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो उनके आधिपत्य में है। यहाँ पर कोई कृष्ण कृष्ण पुकारता नहीं है, वो सब बाहर पुकारते हैं, वो द्वारका में, मुंबई में, जय श्री कृष्ण, यहाँ पर जय श्री राधे। बस कुछ लोग बहस करते हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें तत्व भी है और इसमें भावना भी है, दोनों है इसमें, भक्ति भाव भी है और तत्व भी है। तत्व यह है कि जब भगवान आते हैं तो अपने अनंत शक्तियों के साथ में आते हैं, और एक उनकी प्रधान शक्ति होती है, जैसे जब राम बनकर आते हैं तो वो सीता देवी के रूप में आते हैं। ये सब ब्रह्मा जी ने बताया, जब भगवान का विवाह किया उसने भांडीरवन में, तो ब्रह्मा जी ने बताया है सब कुछ ये, कि ये जो कन्या है आपके सामने भगवान, ये जब आप यज्ञ बनकर आते हैं तो दक्षिणा बनकर आती है, जब नर नारायण बनकर आते हैं तो परम शांति बनकर आती है, जब आप राम बनकर आते हो तो सीता बनकर आती है, जब नरसिंह बनकर आते हो तो रमा बनकर आती है, जब नारायण बनकर आते हो तो लक्ष्मी बनकर आती है, जब आप कृष्ण बनकर आ रहे तो राधा बनकर आ रही है। ऐसे कई कई नाम और कई दिए हैं। तो ये भगवान की जो है प्रधान शक्ति है, बाकी परास्त शक्ति विविधैव सूयते। हाँ, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, एक ही शक्ति नहीं, लेकिन ये प्रधान शक्ति जो है वो राधा रानी है, उसको अंतरंग शक्ति कहते हैं, मतलब प्राइवेट। तो वो जब उसके माध्यम से ही हम उस व्यक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सीता के माध्यम से ही राम जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, लक्ष्मी के माध्यम से ही नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है, रमा के माध्यम से ही नरसिंह भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है, परम शांति देवी के माध्यम से ही नर नारायण की कृपा प्राप्त हो सकती है, वैसे राधा रानी के माध्यम से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों? अरे ये सब देने वाला तय करता है कैसे करना है उसको। देने वाला बोलेगा मैं गार्डन में बैठ के दूंगा, कोई बोलेगा मैं घर पे बिस्तर में बैठ के दान दूंगा, तो लेने वाला बिस्तर में पहुंच जाएगा। बोला ऐसा क्यों? बोले मेरी मर्जी है, देने वाला मैं हूँ, कहाँ बैठ के देना है मेरी मर्जी। इसी तरह से जो कृपा करने वाले हैं भगवान स्वयं, वो तय करते कि मैं मेरी प्रधान शक्ति के द्वारा ही दूंगा कृपा, साक्षात नहीं दूंगा, तब मेरी प्रधान शक्ति मुझसे बोलेगी तो मैं दूंगा, ये मेरी इच्छा है, क्योंकि वो स्वतंत्र भगवान है, परम स्वतंत्र भगवान भगवान है हमारे, वो किसी के अधीन नहीं है, लेकिन प्रेमवश वो अपने शक्ति के अधीन हो जाते हैं। ये भी उनकी स्वतंत्रता ही है, ये उनका खुद का चॉइस है कि मैं इनके अधीन हो जाऊंगा, बस उनकी मर्जी है ये। वो ये भी तय करते हैं कि मेरे तो राधा रानी तो है, उसके अधीन में रहूंगा, लेकिन और एक व्यक्ति है उसके भी अध्ययन रहूंगा, वो कौन है? भक्त है, तो मेरा भक्त है उसके भी अधीन रहूंगा मैं। अब ये भी उनकी मर्जी है, मर्जी से तय करते कि मैं उनके अधीन रहूंगा। तो ये सब जो चक्र है ना, ये भगवान का महिमा जो भी है वो भगवान की शक्ति की वजह से है, सारा भगवान का गौरव जो है वो उनकी शक्ति की वजह से है, सब कुछ वो शक्ति नियंत्रित करती है। यहाँ तक कि वो आम तौर पे हमारे दुनिया में ऐसा होता है ना, शक्तिमान शक्ति का नियंत्रण करता है जिसकी शक्ति होती है, लेकिन भगवान अपनी इच्छा से उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, फिर भी उसके नियंत्रण में आने का निर्णय लेते हैं कि मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तय करूँगा कि मैं मेरी शक्ति के अधीन हो जाऊँगा। तो वो है राधा रानी। और ये भगवान के जितने भी स्वरूप हैं, हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितने भी भगवान के स्वरूप हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ स्वरूप भगवान का श्री कृष्ण का है, बाकी सब उनके एतेच अंश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कला और अवतार है उनके अलग अलग। तो राधा रानी अगर लक्ष्मी बनकर आई तो राधा रानी की इतनी शक्ति लक्ष्मी में नहीं रहती, राधा राधा के रूप में आती है तो वो परम शक्ति है सबकी, उसी के द्वारा लक्ष्मी का निर्माण होता है, उसी के द्वारा रुक्मिणी का निर्माण होता है, सब रानियों का निर्माण होता है, उसी के द्वारा गोपियों का निर्माण होता है, उसी के द्वारा ब्रज का निर्माण होता है, उसी के द्वारा वृंदा देवी का निर्माण होता है, सब उनकी शक्तियों के द्वारा निर्माण होता है, उसी के द्वारा दुर्गा देवी निर्माण होती है, उसके द्वारा दुर्ग निर्माण होता है, और दुर्गा देवी फिर अपने अनंत शक्तियों के द्वारा ये दुर्ग को संभालती है। ये जो राधा रानी है ये परम शक्ति है, और इस राधा रानी का और भी वर्णन आता है कि ये महाविष्णु जो है, आप जानते हैं महाविष्णु कौन है? महाविष्णु ये भौतिक जगत के एक ही मालिक है, पूरा जितना भौतिक जगत है, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है, जिसमें एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी पर हम लोग बैठे हुए हैं, ऐसे एक बोरी में अगर आपने 100 किलो सरसों के दाने भर दिए, समझो एक बोरी बना दिया 1 क्विंटल का, तो उसमें आप गिन सकते हो क्या कितने सरसों के दाने हैं? इतने अनंत ब्रह्मांड है दुनिया में, तो सब तैर रहे हैं अवकाश में, वो सारे अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण महाविष्णु करते हैं। और ये निर्माण कैसे करते हैं? अरे बाप रे, हाँफ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, इतना निर्माण करना है उनको, क्रिएट करना है। हाँ, सब लोग लेबर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है, वो सो रहे हैं, वो अपने ही शरीर से द्वारा निकला हुआ ज्वल का समुद्र बना हुआ है, उसको कारण जल कहते हैं, उनके ही द्वारा निकला हुआ जल है वो, उस विशाल समुद्र है, उस पर वो लेटे हुए हैं योग निद्रा में, और केवल योग निद्रा में ही सबको निर्माण कर रहे हो। आप लोग कर सकते हो क्या? हाँ, सो रहे रात को, सुबह एक बिल्डिंग तैयार हो गया है ना, कितना अच्छा रहेगा ना। रात को खाली सोचना है बस, 1-2-4 बेडरूम का एक फ्लैट बन जाए, सुबह उठेंगे तो नींद में ही एक फ्लैट तैयार, अगले दिन नींद के लिए उसमें जाना है, 1 साल के बाद उसी में सोकर सोचना है अगली बार 10 बेडरूम का फ्लैट हो जाए, तो सुबह उठेंगे तो 10 बेडरूम का फ्लैट ऐसा तो कभी होता नहीं ना, लेकिन महाविष्णु स्वयं निद्रा में पूरे ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, उनके छिद्रों से पूरे रोम रोम से बीज रूप में ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर विकसित होते हैं और ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो महाविष्णु जो है वो नारायण के अवतार हैं, वो नारायण जो है वो संकर्षण के अवतार हैं, वो संकर्षण जो है वो संकर्षण नंबर 1 के अवतार है, वो संकर्षण जो है वो बलराम जी के अवतार है, और बलराम जी जो है वो कृष्ण के अवतार है। तो कितनी डिग्री के अवतार हो गए वो? 6 डिग्री तो गए बीच में, 6वीं डिग्री है ये। लेकिन वो महाविष्णु, देवी भागवत में उसका वर्णन आता है कि वो महाविष्णु की माँ राधा रानी है, जन्मदात्री है उनकी, वो परम आदिशक्ति, ऐसा उसका वर्णन देवी भागवत में किया गया है। वो श्री कृष्ण के हृदय की संजीवनी है। संजीवनी का मतलब क्या होता है? जो गलित गात्र हो गया है, इसके शरीर में कुछ बल नहीं है, संजीवनी उसको जीवन देती है, जीवन, तो जीवन देने वाले चीज को संजीवनी कहते हैं। तो ये कृष्ण की हृदय संजीवनी है, ये श्री कृष्ण के हृदय को जीवन देती है, श्री कृष्ण के हृदय को हृदय बनाती है वो राधा रानी। और एक मुख्य बात समझना है कि श्री कृष्ण भगवान जो है ना, वो रस के बड़े आशिक हैं वो। और रस किसको कहते हैं? जो भक्ति में शुद्ध भावना जब निर्माण होती है ना, एकदम परम शुद्ध भावना, जो अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है, जैसे कोई फ्रेंडशिप के मूड में प्रकट होती है, उसको साख्य भाव कहते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के भाव में प्रकट होती है तो उसको माधुर्य कहते हैं। माता पिता के प्रेम से प्रकट होती है तो उसको माँ वात्सल्य कहते हैं, है ना। वो सब शुद्ध प्रेम भाव है, लेकिन उसका भी एक अलग अलग टाइप है। एक माता का है, एक प्रेमिका का है, एक दोस्त का है, और एक शांत, यानी कि जैसे बंदर, मोर, गाय, उनका भी एक भाव है भगवान के प्रति। कल्प वृक्ष है, इनका भगवान के प्रति शांत रस का भाव होता है। और हनुमान जी का कैसा होता है? दास्य भाव होता है, सर्वेंट। तो ये शुद्ध भाव जो है वो अलग अलग प्रकार से परम शुद्ध होकर प्रकट हो जाते हैं, तो उसको रस कहते हैं। और रस खास करके उसको कहते हैं कि ये जो भाव के द्वारा जो लीला होती है उसके अंदर जो आनंद प्राप्त होता है उसको रस कहते हैं। बड़े बड़े रस नहीं होता है, जब भी मोर कुछ नाचता है भगवान के लिए तो वो शांत रस में नाच रहा है, तो उसमें जो आनंद प्राप्त करता है उसको रस कहते हैं। वो रस का आस्वादन भगवान करते हैं, क्योंकि रसेश्वर जो है वो भगवान स्वयं है, रसराज। तो सारे रसों के अधिपति श्री कृष्ण स्वयं है, लेकिन इन सारे रसों का निर्माण जो है वो राधा रानी की तरफ से होता है। राधा रानी रस का स्रोत है, रस का उगम है, और उन्हीं के द्वारा रस की निर्मित होती है, और उन्हीं के द्वारा रस भगवान को प्राप्त होता है, और उसके बाद में वो ब्रज में प्राप्त होता है, उसके बाद में उसका विकास होता है। लेकिन मूल रूप से रस अधिष्ठात्री, यानी कि सबसे कंट्रोलर। अधिष्ठात्री मतलब क्या? जैसे हॉस्पिटल में होता है ना अधिष्ठाता अधिष्ठात्री, तो रस की, रस के विषय की अधिष्ठात्री राधा रानी है, और वो रस का निर्माण बरसाने में होता है, वहां से कृष्ण भाव उसकी प्राप्ति करते हैं, और उसके द्वारा फिर पूरे ब्रज में वो विश्व विकास होता है उसका और विस्तार होता है, और उसके बाद में हम सब लोग उसका याचना करते हैं कि हमें भी प्राप्त हो जाए। तो आज का हमारा विषय था राधा रानी के गुणों का वर्णन करना था हमको, तो राधा रानी के तो अनंत गुण हैं, क्या क्या वर्णन करें। राधा राधा श्याम सुंदर जी कृष्ण बलराम मंदिर में वो तो बोर्ड लिखा है, पता है ना आपको, भगवान के बाजू में राधा रानी के 25 गुणों का वर्णन किया वहाँ पर, अनंत गुण में से 25 गुण विशेष हैं, और 25 गुण में भी बहुत सारे गुण विशेष हैं। एक उनका गुण है ये कि वो प्रेम लीला करने में बहुत निपुण हैं, वो राधा रानी इतना निपुण प्रेम लीला करने में और कोई नहीं, सब गोपियाँ प्रेम लीला करती है, लेकिन राधा रानी की जो निपुणता है प्रेम लीला करने में, जो खासियत है उनकी, जो कला है उसके अंदर, वो किसी के अंदर नहीं है। और जितना राधा रानी अपने प्रेम से भगवान को नियंत्रित करती है उतना कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सब गोपियाँ राधा कृष्ण भगवान को नियंत्रण करने के कोर्स में लगे हुई हैं, उन्होंने डिप्लोमा किया है कि हमको कृष्ण को कंट्रोल में रखना है, कोई भी चाहता नहीं है कि कृष्ण को कंट्रोल में रखें, लेकिन ये चाहते हैं कि उनका प्रेम मुझको मिले, हम उनको प्रेम कर सकें। लेकिन वो भी जानती है कि राधा रानी के अलावा अधिक श्री कृष्ण के प्रेम को आकर्षित करने वाला और कोई नहीं है, उतनी तीव्रता से श्री कृष्ण का प्रेम और कोई आकर्षित नहीं कर सकता जितनी राधा रानी करती है। तो ये उनका एक विशेष गुण है। सारे रसों का वो सार है, सारे रसों का क्या कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्वायर, सरोवर नहीं हो गया, पूंजी है वो, पूंजी, स्टॉक हाउस, और उगम भी है और स्टॉक भी उनके पास है। हम उधर कहाँ जाना है आपको, वो आइसक्रीम का मतलब फैक्ट्री उधर है, उधर से आता है वो, वहाँ पर स्टॉक है उसका। तो वो जो स्टॉक है हाँ पूंजी, वो राधा रानी है, रस की पूंजी। और एक बात होती है उनके गुणों के अंदर, को कहते हैं महाभाव। हाँ सब लोग सुन रहे हैं ना आप लोग, हरे कृष्णा हाँ कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक होता है महाभाव, जो 8 प्रकार के प्रेम के भाव से बनता है। एक होता है रति, एक होता है स्नेह, एक होता है प्रेम, एक होता है प्रणय, उसके आगे वाला होता है राग, उसके बाद अनुराग, उसके बाद भाव, और उसके बाद मान। ये 8 प्रकार के विभिन्न प्रेम के प्रकारों से सब मिलकर महाभाव बनता है। मान भी इसके अंदर है, थोड़ा विपरीत है वो मान, यानी कि थोड़ा क्रोध भी करते हैं बीच में, वो क्रोध इसलिए करते हैं कि क्रोध से भी प्रेम बढ़ता है। तो अलग अलग प्रकार के भाव जो होते हैं प्रेम के, वो इकट्ठा होकर एक होता है महाभाव। वो महाभाव का स्रोत भी राधा रानी है, वो महाभाव भी राधा रानी से कृष्ण को प्राप्त होता है। पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मांडों के निर्माण के अंदर महाभाव केवल किसके पास है बताओ? एक है कृष्ण जो जगन्नाथ भी हैं स्वयं, एक है राधा रानी, और एक दोनों मिलकर बनते हैं वो कौन है? गौरांग महाप्रभु। बस तीनों के पास ही महाभाव है, और किसके पास महाभाव नहीं है। ये एक उनका और एक गुण है। श्री कृष्ण भी उन्हीं से महाभाव प्राप्त करते हैं। श्री और एक गुण राधा रानी का है कि उनके चरित्र में बहुत श्रेष्ठता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमिटी। सब्लिमिटी मतलब बहुत श्रेष्ठ है उनका चरित्र। और एक कहते हैं ग्रे ग्रेविटी, यानी कि बहुत गंभीर भी है वो, भगवान से प्रेम करती लेकिन इस विषय में बहुत गंभीर है वो। अभी ग्रेविटी किसको कहते हैं? ग्रेविटी यानी गंभीरता, कि किसी भी विषय को आप लेंगे तो इसे आपको, आपको बालक होता है, जो आपको बालक है तो बालक का लालन पालन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट गंभीर बात है, आप उसको लाइटली ले नहीं सकते। कभी खिला लिया, कभी छोड़ दिया, कभी कपड़ा पहना नहीं पहना, कभी स्नान कराया नहीं कराया, ऐसा नहीं होता ना। एक बालक होता है तो वो माँ गरीब हो या अमीर हो या सुंदर हो या कुरूप हो, उसके लिए बालक का लालन पालन बहुत गंभीर विषय है, उसको ग्रेविटी कहते हैं। क्या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं कि द मदर इज़ वेरी ग्रेव अबाउट रेजिंग द चाइल्ड, और एक पति के लिए अपनी पत्नी को संभालना भी बहुत गंभीर विषय है। उस तरह से कृष्ण के प्रेम के प्रति राधा रानी बड़ी गंभीर है, और उतना गंभीर और कोई नहीं है, इतना कमिटमेंट भी और किसका नहीं है। राधा रानी का और एक गुण है, राधा रानी कृष्ण के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है, बहुत ज़्यादा समर्पित। इस दुनिया में उसके आसपास का उदाहरण एक माँ का और बच्चे का ही हो सकता है। एक माता जितने बच्चे के लिए समर्पित होती है, वैसे एक पत्नी भी पति के लिए होगी कि नहीं बोल नहीं सकते, कोई होगी तो हो जाएगी लेकिन गारंटी नहीं। लेकिन माता बाय डिफॉल्ट होती है। बच्चा काला कलूटा हो या भिखारी का बच्चा हो या राजा का बच्चा हो या किसी सुंदर औरत का हो या कुरूप औरत का हो, काला कलूटा हो या गोरा गोरा हो, लेकिन हर बालक के प्रति माता जो है समर्पित होती ही है। आगे जाकर झगड़ा होगा, छोड़ देगी बेटे को, बेटा छोड़ देगा माता पिता को, लेकिन माता अपने बेटे के प्रति हमेशा बालक के प्रति समर्पित ही रहती है। तो श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी पूर्णतः समर्पित है। जब उन्होंने कहा कि मैं अवतार लूंगा, तो इसने कहा कि मैं किसको देखूंगी भी नहीं जब तक आपको देखूंगी नहीं। मैं आऊंगी जरूर आपके साथ, लेकिन वादा चाहिए मुझे कि आपको ही पहला देखूंगी, उसके पहले आंखें ही नहीं खोलूंगी, मैं किसी को सुनूंगी भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करूंगी, सिवाय आपको दर्शन किए हुए, और कुछ सुनूंगी भी नहीं, कुछ स्वाद भी नहीं करूंगी मुंह से किस चीज का, किसी भी इंद्रियों को कुछ भी आनंद नहीं दूंगी, उसका उपयोग भी नहीं करूंगी किसी भी इंद्रिय का, जब तक आपके विषय में मेरा संपर्क नहीं होगा। इसलिए जब बच्चे पैदा हुई कमल के अंदर, इतनी सुंदर कन्या जिसके कोमल अंग इतने इतने सुंदर थे, उनके अंग कृष्णांगी कहते हैं उसको, एक नाम उसका, यानी कि एक कृष्ण नाम का अर्थ ये होता है कि बहुत कमजोर, और एक कृष्ण नाम का अर्थ होता है बहुत कोमल, बहुत ही अति कोमल, अति सुकुमारी, अति कोमल, ऐसे हर एक उसके अंग थे, इतने सुंदर अंग थे उनके। लेकिन बहरी गूंगी और अंधी थी वो, तो अशुभ लगा उनको बहुत। लेकिन जब कृष्ण भगवान आए उनके घर पे समारोह में, तो केवल कृष्ण के शरीर के सुगंध के द्वारा ही ये उत्तेजित हो गई और आंखें खोल दी उसने, और जोर से रोकर किल्लोड़ किया उसने, इतनी समर्पित है वो, और कुछ नहीं चाहती। हमको अपने जीवन में ये गुण लेना चाहिए, फोकस। फोकस मतलब क्या? एकाग्रता। जो लक्ष्य है उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है उनको, एक ही चीज बस, इतना समर्पण है उसके प्रति कि उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। कुछ चाह भी नहीं है, कुछ इच्छा भी नहीं है, यहाँ वहाँ देखना भी नहीं है, टाइम पास के लिए भी नहीं है, पूरा ध्यान 100% जो है वो अपने इष्ट की ओर है। हमको भी ऐसा ही होना चाहिए। राधा रानी हमारे गुरु हैं, जिस प्रकार से परम लक्ष्य हमारा श्री कृष्ण है, जिस प्रकार से वो उस उनके लिए समर्पित है, वैसा हमको भी होना चाहिए, और यहाँ वहाँ का टाइम पास नहीं करना चाहिए। इससे कुछ करना है, थोड़ा काम चोरी यहाँ पर कर लेना है, थोड़ा इसको चीटिंग कर लेना है, थोड़ा धन यहाँ पर कमा लेना है, थोड़ा इसको फंसाना है, थोड़ा स्वार्थी काम करना है, बीच में थोड़ा भजन भी कर लिया हरे कृष्णा, हाँ ऐसा नहीं है उनका, डिवाइडेड काम नहीं है, फिक्स्ड है। और वृंदावन वृंदावन में निवास करते हुए उनका लक्ष्य जो है, चाहे वो गौलोक में रहे चाहे भौम वृंदावन में यहाँ पर रहे, लक्ष्य तो उनका कभी मिटता नहीं है। गौलोक में भी वही भाव है उनका, जहाँ पर भगवान रहते हैं जब अवतार लेने नीचे आते हैं तो भी उसी भाव में रहती है वो। और राधा रानी की जो नम्रता जो है वो बड़ी विचित्र है। राधा रानी इतनी बड़ी शक्ति भगवान की है तो कितना गर्व होना चाहिए उसको। अभी मुकेश अंबानी की पत्नी है नीता अंबानी, कितना गर्व होगा कि मैं मुकेश अंबानी की पत्नी हूँ। और कोई अगर राष्ट्रपति है, अगर उसकी कोई पत्नी है, तो उसको कितना गर्व होगा। जितना बड़ा पति उतने पति को, पत्नी को उतना ही गर्व होता है ना। वो अनिल अंबानी की जो पत्नी है, वो कभी जाती है खरीदी करने के लिए तो 5-10 करोड़ तो ऐसे ही टाइम पास में खर्च करके आती है, ऐसे ही माइनर शॉपिंग, ऐसा नहीं कि शादी हो रही है घर में, तो फिर अलग बात है। तो जितना पति बड़ा उतना उसकी पत्नी का भी बड़ा स्थान होता है। तो राधा रानी को कितना गर्व होना चाहिए बताओ। तो श्री कृष्ण की सखी है वो, परम सखी, लेकिन सर्वोच्च नम्रता उनके पास में है। कैसे नम्रता है उनकी? वो कभी भी किसी भक्त के बारे में सोचती है ना, समझो वो आपके बारे में सोच रही हो, तो ये सोचती है कि ये मुझसे अच्छे भक्त हैं, और हे श्याम सुंदर इनको आप अपना बना लो, ये मुझसे भी अच्छे भक्त हैं। ऐसा हाथ क्यों है उनका? वो आपके बारे में सोच रही है, आपको अर्पण करिए भगवान से, बोल रही है देखो मुझसे भी अच्छा भक्त है ये, इसको पना दे दो आप, कितना कृपा है उनके अंदर। हाँ, लेकिन वो कृपा जो है, कृपालु जो उनका स्वभाव है, वो नम्रता पर भी आधारित है। कोई सोच कर नहीं अर्पण कर रही है, हाँ ठीक है नया कोई आया है, अच्छा ठीक है ले लो भगवान, इनको जरा कृपा कर लो उसके, नहीं ये मुझसे अच्छा है यह कहकर उसको अर्पण कर रही है। कोई जरूरत है क्या ऐसा बोलने की? वो बोलेंगी तो भगवान अर्पण कर स्वीकार करते ही है, लेकिन उसका भाव जो है, जिस भाव से वो अर्पण कर रही है, वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ महान महान कार्य करने में समर्थ होंगे, लेकिन उन महान महान कार्य को समर्थ करते हुए आप नम्र हो सकते हो क्या? बहुत मुश्किल। तो जैसे आप महान काम करने में समर्थ हो जाते हो, आपने एक अनायासी गर्व उत्पन्न होता है कि मैं इतना महान कार्य करने में समर्थ हूं, और देखो और कोई नहीं कर सकता, मैं ही करता हूं। तो इतना महान पद पर होने पर भी, इतनी भगवान की इतनी चहेती होने पर भी वो नम्रता को बनाए रखती है, ये विशेष बात है। इसको हम स्पिरिचुअल कहते हैं। केवल आध्यात्मिक जीवन में ही आदमी महान बनने के बाद भी नम्र बन सकता है। भौतिक दुनिया में जितना बड़ा बनेगा उतना गर्विष्ठ बनेगा, उतना अहम बढ़ेगा उसका। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर जितना बड़ा बनते हैं हम लोग, उतना नम्रता बढ़नी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं। सबसे बड़े जो गुरु होते हैं वो सबसे अधिक नम्र होंगे, तो उसको हम स्पिरिचुअल कह सकते हैं। ये विशेष बात है। प्रभुपाद जी के अंदर वो गुण था, जगत गुरु, बड़े गुरु थे वो। तो एक दिन वो बैठकर एक प्रवचन में वो मध्यम अधिकारी, ये उत्तम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के बारे में वर्णन कर रहे थे। रूप गोस्वामी जो बताया वो समझा रहे थे कि ये गुण जो है वो अधिक, वो गुण वाला आदमी कनिष्ठ अधिकारी होता है, फिर ये गुण ज्यादा जिसमें होते हैं वो मध्यम अधिकारी होता है। हाँ, फिर व्याख्या की गई है। और ये जो व्यक्ति है वो उत्तम अधिकारी है। मतलब जो संक्षिप्त में कहा जाए तो जो व्यक्ति भगवान के विग्रह में भगवान को देखता है वो कनिष्ठ अधिकारी है। जो भगवान के विग्रह के साथ साथ भक्तों के अंदर भी भगवान को देखता है वो मध्यम अधिकारी है। और वो भगवान के विग्रह, भक्त और बाकी लोग भी, और बाकी जीव भी, सब बाकी अचर चर असर वस्तु भी, हाँ मतलब पेड़ भी, जमीन भी, पत्थर भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, पहाड़, जो भी दिखेगा वो सब में भगवान को देखेगा, उसका उसको उत्तम अधिकारी कहा गया है। अब ये जब कथा चल रही है तो उसमें एक आदमी बैठा हुआ है, हम लोग उसको कहते हैं ना थोड़ा सा, उसमें भी कुछ निकालेगा, कोट निकालेगा, बोलते महाराज एक प्रश्न है मेरा, आप किसमें हो? अभी आपने इतना अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया ना 1, 2, 3 ग्रेड का, तो आप कौन से ग्रेड में हो? अभी कितना कैची प्रश्न है। देखो प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी अवस्था में थे, अगर वो बोलते हाँ मैं तो इसमें उत्तम अधिकारी स्टेज में हूँ, बोलेगा बड़े गर्विष्ठ हैं आप, अपने आप को सबसे बड़ा समझते हो। तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, मैं ये सबका, सब लोगों का दास हूं, ये सभी प्रकार के लोग हैं, इनका दासानुदास हूं मैं। तो आदमी तो चुप हो गया, क्योंकि ऐसे उत्तर की उसको अपेक्षा नहीं थी। और उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि एक काम करो, एक घंटा बाद आओ, मैं बताता हूं मैं कहां पर हूं। झट से बता दिया, मतलब अपने बारे में जो उनकी पहचान थी वो उनके मन के सबसे ऊपर थी, उनको सोच कर नहीं बोलना पड़ा कि मैं कौन हूं, झट से जवाब दिया। अगर मैं आपको पूछूंगा आप कौन हो, तो बोले मैं डॉक्टर हूं, जो आप हो तुरंत आप बोलेंगे ना। वैसे जो थे वो, मतलब वो थे अपने आप के लिए दासानुदास सबके, तुरंत जवाब दिया कि मैं इस सब लोगों का दास, सबसे नीचे मैं हूं। एक्चुअली उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया कि वो इंग्लिश में क्या बोल रहे थे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसा बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला आप कौन से क्लास में हो? तो उन्होंने कहा मैं क्लास 5 में हूँ, मतलब सबसे नीचे हूँ, क्लास 5। ये इतने बड़े आचार्य होने पर भी वो नम्रता होती है उसके अंदर कि मैं किसी चीज़ के योग्य नहीं हूँ, सबका दास हूँ। तो ये जो गुण है वो राधा रानी का विशेष गुण है। और हमारे प्रभुपाद जो जवान थे, सॉरी जब बालक थे, तभी उनके माता पिता जो थे उनको घर में बहुत मेहमानों को बुलाते थे, साधुओं को भोजन कराते थे। उनके पिताजी अपने घर में बाहर जाकर ताली बजाकर पुकारते, कोई भूखा है, कोई किसी को भोजन करना है बताओ, तो बहुत लोग ऐसे आ जाते थे। फिर उनको भोजन करा के फिर वो संतुष्ट करने के बाद में अपने बालक अभय को, प्रभुपाद जी को लेके आते थे, बोलते थे ये मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। ये आशीर्वाद वो सारे साधुओं से मांगते थे हमेशा कि इसको राधा रानी का भक्त बनने का आशीर्वाद दो, और फिर खुद का भोजन करते थे रोज। तो वो प्रभुपाद जी राधा रानी के श्रेष्ठ भक्त हैं। उन्होंने क्या कविता लिखा, जब वो जा रहे थे अपने हवाई जहाज अपने बोट से जलदूत में बैठकर अमेरिका जा रहे थे, कि उन्होंने कविता लिखा उसके अंदर। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं जिससे राधा रानी खुश हो। क्या है वो वर्डिंग, क्या उसका, जब राधा रानी खुशी हो बे, मैं वो कार्य करना चाहता हूं जिससे राधा रानी खुश हो जाए। श्री कृष्ण का इष्ट कार्य करूंगा जिससे उनको प्रसन्न करूंगा, राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी जब प्रसन्न हो जाती है तो ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। आप अलग से कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, उतनी शक्ति ही नहीं किसके अंदर। योगी भी अपने जन्म जन्मांतर के ध्यान करके उनको प्राप्त नहीं कर सकते, उनको पकड़ नहीं सकते हैं, उनको केवल राधा रानी की कृपा होगी तो ही हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवान किसी को वश में नहीं आते, कुछ भी करो आप। अरे अनंत काल तक तपस्या करने से उनके 20 नाखून हैं, 2 हाथ के 10 और 2 पैर के 10, उनमें से अनंत किरण निकलते हैं, आभा प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है। उन हजारों लाखों करोड़ों खरबों अरबों किरणों में से एक किरण भी उसको दर्शन नहीं होता है जो जन्म जन्मांतर तक तपस्या और ध्यान तप करते हैं। वही व्यक्ति जब कृष्ण भगवान जब राधा रानी सिफारिश करती है, तुरंत झट से उनके हो जाते हैं, उनके आदि हो जाते हैं, वश हो जाते हैं उनके। ये राधा रानी की शक्ति है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक गुण राधा रानी का है, बताओ कौन सा बच गया। दयालु, करुणा प्रेम दया मई राधे, कृपा मई राधे, दया मई राधे, दया मई राधे, करुणा मई राधे, करुणा मई पुकार सुनो अब। ये जो करुणा है ये उनके प्रधान गुणों में से एक है, सबसे प्रधान गुण करुणा का है। उनका व्यक्तित्व जो है इस करुणा से ही बना हुआ है, और पर्सनालिटी इज मेड आउट ऑफ कंपैशन ओनली। और वो ये जो गुण उनका है वो सब केवल दूसरों के लिए है, उसमें खुद के लिए कुछ नहीं, केवल दूसरों के लिए। वो करुणा इतनी गहरी है कि श्री कृष्ण के पास भी, श्री कृष्ण की ही शक्ति होने पर भी श्री कृष्ण के पास उतनी करुणा नहीं है जितनी इनके पास में है। जिनको श्री कृष्ण ठुकरा देते हैं इनको ये अपना लेती है, बाद में श्री कृष्ण को भी अपनाने में मजबूर कर देती है। जैसे कि अश्वत्थामा, श्री कृष्ण के द्वारा शापित हुए वो। अरे आज तक के इतिहास में कोई भी ऐसी कथा नहीं है जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने किसी को इतना भयंकर शाप दिया होगा। एक तो मणि उतार लिया उसका, इसमें जख्म बहेगी आपकी, खून बहते रहेगा इसके अंदर, कभी बंद नहीं होगा, कुछ भी लगाओ उसको, और इतना दर्द होगा उसके भयंकर कि आप मरना चाहोगे उस दर्द के सामने, कि मरना बेहतर है लेकिन दर्द नहीं चाहिए, लेकिन मर भी नहीं पाओगे, इतना दर्द होगा उसके अंदर। और मरोगे भी नहीं, चिरंजीवी हो जाओगे और तड़पते रहोगे। इतना भयंकर शाप तो भाई किसी को आज तक उन्होंने दिया नहीं। वैसे आदमी को, ऐसा पापी आदमी को राधा रानी ने सहारा दिया और दर्द मुक्त कर दिया उसको, और भक्त बना दिया अपना। आज भी पिपासा वन में निवास करते हो, वहां जाकर सब देवताओं ने हाथ ऊपर उठा लिया, भाई तुम्हारा काम हमारे पास नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए, आपका काम ही ऐसा है, जो मालिक ने श्राप दिया है उसको हम क्या तोड़ सकते हैं। लेकिन जाओ एक बार ट्राई करो, राधा रानी के धाम में जाओ, वहां पर पुकारो उनको, अगर महारानी करुणामयी अगर सुन लेगी आपका तो कुछ आपका बन सकता है काम। तो ये गए हैं उधर बरसाने में, पिपासा वन में बैठकर उन्होंने पुकारा है, और वहाँ पर पिपासा वन में जब पुकारा तो राधा रानी ने उन पर कृपा कर दिया, सारा दर्द जो है खून बहना बंद, जख्म भर गया, सब दर्द मिट गया और शुद्ध भक्त बन गए वो। लेकिन एक गुण उनके अंदर तब तक आ चुका था, वो था पश्चाताप। वो सच्चा पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने गलती किया, इतना मतलब वो दर्द के कारण इतना शुद्धिकरण हो गया उनका, इतना प्योरिफिकेशन हो गया कि वो बिल्कुल ऐसे अवस्था में आए थे कि और कुछ और कोई पाप ही नहीं कर सकते कभी। बड़ी पश्चाताप की सच्ची भावना में आ गए थे वो, और उस भावना में असहाय होकर उन्होंने राधा रानी को पुकारा था, इसलिए राधा रानी ने उनको माफ किया। हमको भी अगर उनकी कृपा चाहिए, हम भी सोचते हैं कि हम भी पापी हैं, बहुत बहुत सारा हम गलत काम करते हैं, अगर हमारे हृदय में सच्ची भावना हो गई, और इस भावना का प्रूफ क्या है कि वो दोबारा वो वैसे कोई काम नहीं करेगा, ये उसका प्रूफ है। पश्चाताप की व्याख्या क्या है? पश्चाताप मतलब हम उन कार्यों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं जो हम दोबारा नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि माफ़ी हो गया तो दोबारा चालू हो गया, दोबारा माफ़ी मांगेंगे, ऐसा नहीं होता है। सही पश्चाताप की व्याख्या यह है कि वो दोबारा कभी भी वो गलत काम नहीं करेगा। उस भाव में थे अश्वत्थामा। तो हमें भी अगर राधा रानी की कृपा चाहिए तो हमको सबसे पहले हमारे सारे पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, और हृदय में असहायता का भावना का अनुभव करना चाहिए, और हृदय से उनको पुकारना चाहिए, करुणामयी पुकार सुनो अब। सब कुछ, सब रजोगुण तमोगुण अहम सब त्याग करके उनको पुकारना चाहिए, हृदय से पुकारना चाहिए, तब वो सुनती है। उनको हम फंसा नहीं सकते हैं हमारे नकली भाव से, ब्रज में डोल रहे हैं, यहाँ वहाँ भक्त का नाटक कर रहे हैं, भक्त बनने का, वो ऐसी कृपा नहीं होती है। तो वृंदावन में ऐसे नाटक करके डोलने पर भी माया का झटका आपके ऊपर आ सकता है, माया का प्रहार आपके हो सकता है, अगर आप चीटिंग करेंगे, हाँ काम चोरी करेंगे, नाटक करेंगे, ढोंग करेंगे, तो वो माया देवी छोड़ेगी नहीं आपको, ऐसा पटकेगी जो बाहर उतना नहीं पटकेगी, ब्रज के अंदर उतना पटकेगी आपको। इसलिए नाटक आप माया देवी की नगरी में कर सकते हो, वहाँ पर उसका एक अलग हिसाब किताब होता है। भगवान की नगरी में आकर नाटक करेंगे तो बाप रे बाप, यहाँ पर तो ऐसा हिसाब होता है उसका कि पछताओगे आप बाद में। लेकिन यहाँ पर आओगे और अगर हृदय से प्रामाणिकता से राधा रानी को पुकारोगे तो ऐसा कल्याण होगा जो बम्बई में, दिल्ली में, मद्रास में कभी भी नहीं होगा आपका। उतनी शक्ति इस जगह पे है, वो जगह भी भगवान की, राधा रानी की जगह है, वो उन्हीं के द्वारा कंट्रोल की गई जगह है, वो उन्हीं का आधिपत्य यहाँ पर है, उन्हीं का राज्य चलता है यहाँ पर। यहाँ पर बैठकर जो प्रामाणिक हृदय से, मतलब कोई चीटिंग नहीं, कोई दुजा भाव नहीं मन में, जो हृदय से भगवान की सेवा करता है, पुकारता है भगवान को, उस पर पूरी कृपा राधा रानी करती है। ये बहुत पावरफुल जगह है श्री वृंदावन धाम। हाँ, इसमें कोई भी नाटक करेगा तो उसको वैसा परिणाम मिलेगा, कोई सच्चे दिल से पुकारेगा तो वो कितना भी पतित होगा तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। हम लोग को बार बार सोचना है, हम लोग जब गलत काम करते हैं तो भूल जाते हैं कि हम वृंदावन में हैं, टोटल भूल जाते हैं। उतना बुरे काम का प्रभाव होता है, बुरे भाव और बुरे काम का, कि हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म वृंदावन का है, हमारा निवास वृंदावन का है, हम रहते वृंदावन में हैं, काम वृंदावन में कर रहे हैं, सब भूल जाते हैं हम लोग। जब एक दूजे पर चढ़ जाते हैं हम लोग अपने 1-to-1 फाइट में, तो वो उसमें हमारा अहम हमको इतना अंधा बना देता है कि हम टोटल भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं, वेयर आर वी, व्हाट आर वी डूइंग, क्या कर रहे हैं हम लोग। लेकिन हम अगर हमेशा जागृत रहेंगे कि हम वृंदावन में हैं, हाँ कॉन्शियस रहेंगे, चेतन रहेंगे उसके बारे में, उस विषय में अलर्ट रहेंगे कि हम श्री वृंदावन धाम में हैं, अगर वो अवेयरनेस जागृति आपके अंदर है तो आपका हर कार्य उसके अनुसार ही होगा। सही कृष्ण भावना वही है कि हम जागृत रहते हैं हमेशा कृष्ण के विषय में, कृष्ण के धाम के विषय में, कृष्ण की सेवा के विषय में, कृष्ण नाम के विषय में, तब आपके हाथ से कोई गलत वाक्य नहीं निकलेगा मुँह से, ना आपके हाथ से कोई गलत काम होगा। जो भी आप बोलेंगे कृष्ण भावना में होगा, जो भी करेंगे कृष्ण भावना में होगा, जो भी सोचेंगे कृष्ण भावना में सोचेंगे, तो कृष्ण को ही प्राप्त करेंगे। और ये कृष्ण की प्राप्ति इन सब चीज़ों से करना करना जो कार्य है वो केवल राधा रानी की कृपा है। उन्हीं की कृपा के द्वारा आप कृष्ण के बारे में सोच सकते हो, उनके बारे में सेवा का विचार कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, उनका नाम ले सकते हो। ये सब कुछ कृष्ण का नाम लेने की जो शक्ति आपके अंदर है वो भी इनकी कृपा है। ये वृंदावन का वास जो आपको मिल रहा है, टेम्पररी हो या जन्म के रूप में हो, ये भी उन्हीं की कृपा है। यहाँ पर कुछ सेवा करने का मौका मिला हो, ये भी उनकी कृपा है। आगे जाकर अगर कृष्ण प्राप्त होते हैं तो भी उनकी कृपा है। ये हर अवयव का कृष्ण के प्रति सेवा करने का जो भाग्य है वो भी उन्हीं के कृपा से आता है। उनकी करुणा अगाध है। हाँ, उनकी करुणा के बिना कृष्ण भी नहीं हिलते, उस करुणा के कृष्ण भी लालायित रहते हैं। वो राधा रानी की बात कर रहे हैं हम, और कृष्ण भगवान को डायलॉग नहीं मारते हैं, वो स्वयं हृदय से उनके अधीन रहते हैं। वो केवल जनता को दिखाने के लिए भाषणबाजी नहीं करते कि देखो ये मेरी राधी राधा रानी है, मैं इनके नियंत्रण में रहता हूँ, ऐसा नहीं बोलते। उनकी हर एक कृति जो है, उनकी हर एक सांस, हर एक धड़कन जो उनकी है, वो कृष्ण के अधीन है। स्वयं पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के, पूरे निर्माण के निर्माता होने पर भी जाकर बरसाना में लोटपोट हो जाते हैं। वो समझो कोई कोई प्रधानमंत्री है समझो, या कोई राज देश का प्रेसिडेंट है समझो, वो भरी जनता में जाके अपनी पत्नी के पांव छुएगा क्या? घर में बेडरूम में छुएगा? अरे भाई मान जा मान जा। लेकिन आम जनता में छुएगा क्या? कितना उसके लिए गर्व हरण है, अरे यार क्या आदमी है, इतना श्री लंपट है ये, पत्नी के भी पैर छू रहा है भोग लेने के लिए। लेकिन श्री कृष्ण भगवान इतने परम परम भगवान होने के नाम बाद भी राधा रानी के जाके चरणों में लोटपोट हो जाते हैं सबके सामने। कोई उनको शर्म से संकोच नहीं है उसमें, वो उनके हृदय का स्थायी भाव है। राधा रानी के चरणों में नतमस्तक होना उनका स्वभाव है, उसमें कोई गर्व वर्व की बात नहीं है कि मेरे शिष्य लोग भक्त लोग क्या सोचेंगे। इतनी भाव रखते हैं राधा रानी के चरणों में, वो इतनी महान राधा रानी है। और इसके लिए राधा रानी को कोई गर्व नहीं है, देखो 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 अखिल ब्रह्मांड नायक कैसे झुक के आया है चरणों में मेरे, ऐसे मैं उसको लटक में बांध के घूमती हूँ, ऐसा नहीं है। वो भी उतनी नम्र है, केवल कृष्ण को प्रेम को बढ़ाने के लिए लीला करती रहती हो। ऐसा फोकस किसी में नहीं है कि मान भी करती है या प्रणय भी करती है या रति भी करती है, स्नेह भी करती है, तो केवल उनके आनंद की वृद्धि करने के लिए। उसमें मेरा लाभ होगा, मेरा भाव बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। मेरी कीमत बढ़ेगी, मेरा मूल्य बढ़ेगा, थोड़ा रूट जाऊँगी तो मुझे स्कूटर के बदले में फोर व्हीलर मिल जाएगा, है ना। ऐसे हमारी दुनिया की औरतें जो है वो प्लानिंग करते रहते हैं, थोड़ा सा और रूट जाऊंगी तो अभी चार बैंग कंगन मिलेंगे दो के बदले में, थोड़ा और खींचूंगी तो और गले में भी हार मिलेगा। ये भाव नहीं राधा रानी का, तो ये समझना बहुत जरूरी है। निस्वार्थ जो होता है ना, जिसकी गहराई जो है निस्वार्थ भावना की, वो समझना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए यहाँ का वास है। हाँ, बाकी तो आप नौकरी धंधा करते हो, थोड़ा धन कमा लेते हो, परिवार को संभालते हो, ठीक है, वो सब लोग करते हैं। लेकिन यहाँ के निवास का मूल भाव यही है, राधा रानी के भाव को पकड़ना। अणु मात्र की मात्रा में भी ये पकड़ेंगे ना, तो भी आपका यहाँ का जीवन धन्य है। और वो राधा रानी का जन्मदिन शुक्रवार को आने वाला है। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग अपने मन की आत्मा की तैयारी करो, ताकि राधा रानी का जन्मदिन सही भाव में आप मनाएं। खुद के लिए कुछ मत मांगो, केवल कृष्ण की सेवा मांगो, केवल भगवान के दासों का दास बनने की मांग करो, गर्व को नष्ट करने की मांग करो। करुणा का मतलब क्या होता है? जब करुणा प्राप्त होती है तो आदमी अपना गर्व को छोड़ देता है। गर्व को छोड़ सके तो ये आपके ऊपर कृपा हुई। अहम को, हाँ ढोंग को छोड़ सके आप लोग, तो हम कह सकते हैं कि राधा रानी की कृपा हुई है। बाकी आपका इंक्रीमेंट हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, अरे वाह राधा रानी बहुत दयालु है, हमको अभी प्रेसिडेंट बना दिया, ये उनकी कृपा नहीं है, ये एक साइड इफेक्ट है उसका। असली कृपा वो है जिससे आपका घमंड उतर जाए, जिससे आपके काम वासना उतर जाए, आपका दुनिया के प्रति आसक्ति उतर जाए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, समर्पण बढ़े, लगन बढ़े। वो अगर होता है आपके जीवन में तो आप कह सकते हैं कि कृपा हुई है आपके ऊपर। बाकी बीमार हो गया, ठीक हो गया, बोलते राधा रानी कृपा से ठीक हो गया, वो भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन वो उनकी सच्ची कृपा नहीं है। वो तो बाय द वे बीमार ठीक कर दिया आपको, ठीक है, आपको टाइम पे ट्रेन पकड़ा दिया, ट्रेन पे फ्लाइट मिस होने वाला था वो फ्लाइट पकड़ा दिया आपको, हाँ जाने के लिए, वो सब ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू बोलना जरूरी है उनके लिए। लेकिन उनकी सही कृपा जो है वो श्री कृष्ण प्रेम है, श्री कृष्ण नाम के प्रति आसक्ति है, श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति है, ये उनकी सही कृपा है, और उसके लिए हमको उनके लिए याचना करना चाहिए, और वो भी देने के लिए बहुत लालायित है। अगर आप पुकारेंगे करुणामयी पुकार सुनो अब, तो पुकार सुनेगी आपकी और कृपा करेगी आपके ऊपर। सब लोग पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती राधा रानी की जय हो।